ओम शांति, ओम शांति। राजयोग अभ्यास के प्रातःकालीन पूर्व के दो सत्रों में आपने स्वयं की सत्य पहचान क्या है उस विषय पर विस्तार से समझा। परमात्मा की सत्य पहचान के बारे में भी आपने ज्ञान प्राप्त किया और आपने ये भी समझा कि योग अर्थात संबंध, और जब हम राजयोग कहते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति से मानसिक स्नेहपूर्ण संबंध है, जो सर्वश्रेष्ठ संबंध है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। तो किससे योग करना है और किससे योग लगाना है ये हमने समझा है। आज राजयोग की विधि क्या है और उसके लिए हम क्या आधार लेते हैं वो हम विस्तार से सुनेंगे। राजयोग को राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें स्वयं का राजा बनाता है। राजयोग का अभ्यास करने से हम कर्म इंद्रियों के अधिकारी बनते हैं। सामान्यतः हम कर्म इंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी हमारी कर्म इंद्रियां हमें जैसे चलाती हैं। आंखों से जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो हम सुनते हैं, और मुख से जो नहीं बोलना चाहिए वो हम बोलते हैं, या जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। लेकिन योग अभ्यास से हमारा जीवन संयमित होने लगता है। राजयोग हमें राजाओं का राजा बनाने वाला योग है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो जो जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, वो किसी रॉयल फैमिली में, एक श्रेष्ठ कुल में वो जन्म होता है, और साथ साथ हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताएं जिनकी पूजा आज के राजा भी करते हैं, तो वो राजाओं के राजा हैं। ये राजयोग परमात्मा के द्वारा, स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है। ये किसी भी संत या गुरु ने योग नहीं सिखाया, किसी देहधारी ने ये राजयोग नहीं सिखाया है। राजयोग एक चार्जर की तरह है। जैसे चार्जर में हम डिस्चार्ज बैटरी लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो चार्ज होने लगती है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो वो क्यों डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और जब हम उसे चार्ज में लगाते हैं तो फिर से वो कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही राजयोग अभ्यास करने से हमारी आत्मा रूपी बैटरी, परमात्मा रूपी पावर सोर्स से कनेक्ट होने से फिर से चार्ज होती है। और उसका प्रमाण है कि हमारे मन वचन कर्म जो डिसऑर्गेनाइज होते हैं, डिस्चार्ज होना माना हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और ऑर्गेनाइज होना माना जो हम सोचते हैं फिर वही हम करते हैं। राजयोग का अभ्यास एक बांध की तरह भी है। जैसे बहते हुए नदी के पानी पर बांध बना दिया जाए तो पानी या जल संचय होता है और उसके सदुपयोग किए जाते हैं। वो पानी पीने में काम आता है, सिंचाई के काम आता है, बिजली बनाने के काम आता है, उससे उसको चैनलाइज करके नहरें निकाली जाती हैं, उससे कई उपयोग उस पानी के होते हैं। अगर वो पानी ऐसे ही बहता है या कभी उसमें बाढ़ भी आती है नदी में, तो वो हानिकारक हो सकता है, या कई बार वो जान माल को नष्ट करने वाला भी हो सकता है। तो यहाँ भी मन जो सदा ही विचारों की गति के प्रवाह में रहता है, उस मन को शुद्ध श्रेष्ठ और समर्थ संकल्पों से संचय करना, यानी अपने मन को शक्तिशाली बनाना, मन को श्रेष्ठ दिशा देना, मन को लक्ष्य की ओर ले जाना, ये राजयोग के अभ्यास से संभव होता है। और नहीं तो अगर मन को सही दिशा नहीं मिली तो फिर लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। राजयोग सभी योगों का फल देने वाला है। भारत में करीब 7-8 प्रकार के योग किए जाते हैं, आप देख रहे हैं, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग, क्रिया योग, विपस्ना योग, ऐसे योग किए जाते हैं। तो ये जितने भी योग हैं उसमें राजयोग क्योंकि सर्वोच्च है, स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, इसलिए सब योग इसमें समाये हुए हैं। तो ये ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान माना समझ। तो राजयोग में हमें समझ मिलती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कैसे उसे प्राप्त करना है, परमात्मा कौन है, उनसे मेरा संबंध और उनसे प्राप्ति और अनुभूति। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। भक्ति में हम भगवान को कहते रहे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो कौन सा अंधकार है हमारे जीवन में जिसका प्रकाश हमें चाहिए? तो जो जीवन के मूलभूत सत्य हैं, उन सत्यों के ज्ञान का प्रकाश हमें राजयोग में मिलता है। फिर ये बुद्धि योग है क्योंकि परमात्मा से योग लगाने में हम मन बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मन बुद्धि अदृश्य माध्यम है, दिखाई देने वाला माध्यम नहीं है। आज विज्ञान के युग में हम इन माध्यमों के अनुभवी हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, यहाँ बैठे हुए हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं। तो कोई दिखाई देने वाला कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कैसे बातचीत होती है, मेरे मोबाइल के सेट से वेव्स निकलती हैं और ट्रांसमिशन होकर के टावर से होते हुए वो दूसरे मोबाइल सेट पर पहुंचती हैं, वहां से भी सेम प्रोसेस होता है और हम आपस में इस तरह से बात करते हैं जैसे हम सामने ही बात कर रहे हों। आज हम रिमोट यूज करके टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं और भी कई मशीनें जो हैं वो वायरलेस कनेक्शन से ऑपरेट हो जाती हैं क्योंकि वेव्स निकलती हैं और वो वेव्स हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन काम होता है तो पता है कि उसकी एग्जिस्टेंस है। तो ऐसे ही मन, मन से जब हम परमात्मा चिंतन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो हमारे मन के विचारों रूपी तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं और हम परमात्मा से शक्तियों का अनुभव भी करते हैं, यानी उनसे जो हमें प्राप्तियां होती हैं वो भी हम अनुभव करते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। सामान्यतः जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी हमने भगवान को कह दिया, फिर हमें ये पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ है, इसलिए हम बोल करके चले जाते हैं। लेकिन योग माना हम परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और उस कनेक्शन से हम वो शक्तियों का भी अनुभव करते हैं। भक्ति में भी वैसे परमात्मा को याद करने का माध्यम हमारा मन ही है, भले हम मूर्ति के सामने जाकर खड़े होते हैं लेकिन हमें पता है कि मूर्ति जड़ है, वो तो सुनती नहीं है, फिर भी हम अपने मन के भाव मूर्ति के सामने कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम सोचते हैं भगवान जहां भी है उस तक मेरी बात पहुंच जाएगी। तो कैसे पहुंचेगी? और कई बार जो हम कहकर आए वो पूरा भी हो जाता है, तो हम कहते हैं भगवान ने मेरी सुन ली। तो कैसे सुन ली? तो निश्चित है भगवान जहां भी है मेरे मन की बात उस तक पहुंची, भले मूर्ति को मैंने माध्यम बनाया। तो मन बुद्धि जो हमारे अंतर चक्षु हैं जिनसे हमें आत्मा और परमात्मा दिखाई देते हैं, इन दो स्थूल चक्षुओं से हम परमात्मा को नहीं देख सकते, आत्मा को भी नहीं देख सकते, लेकिन अंतर्दृष्टि जो है उससे हम आत्मा और परमात्मा को देखते हैं और अनुभव भी करते हैं। राजयोग कर्म योग है, कर्म योग है, क्योंकि कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना, उसे हम कर्म योग कहते हैं। तो राजयोग में ये अभ्यास हम करते हैं, क्योंकि राजयोग कोई कठिन क्रियाएं नहीं है, कोई बैठकर हमें आसन लगा करके भगवान को याद करना है या कोई ऐसी क्रियाएं करनी है, नहीं। हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो हमारे दैनिक कर्म हैं वो करते हुए हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। जैसे किसी मनुष्य को भी हम याद करते हैं तो काम करते हुए भी हम उनको याद करते हैं, तो ये भी राजयोग भी सहज राजयोग है, यानी ये भी परमात्मा की सहज याद है, क्योंकि अब उनसे हमारा परिचय भी है और संबंध भी है तो हम उन्हें सहज याद कर सकते हैं। और जब परमात्मा की याद में हम कर्म करते हैं वो कर्म सत्कर्म हो जाते हैं। सत्कर्म वो कर्म है जो एक का पदम गुना फल देने वाले होते हैं। सामान्यतः जो कर्म होते हैं जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, ये कर्म का नियम है, या जो करेगा वो पाएगा या जितना करेंगे उतना पाएंगे। लेकिन एक का पदम गुना फल का मतलब ये आम के बीज बोने की तरह है। जैसे हम कर्मों की तुलना बीज से करते हैं तो कई प्रकार के बीज होते हैं। आपने गोभी का बीज बोया तो एक गोभी के बीज से एक गोभी का फूल होगा। अगर हमने गेहूं बोया, मक्का बोया या ज्वार बोया तो एक बीज से अनेक मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फसल होगी, लेकिन एक सीजन। अगर हमें दोबारा फसल चाहिए तो फिर से हमें खेती करनी पड़ेगी और तब हमें वो फसल मिलेगी। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया या सेब, अमरूद, नारियल, कुछ भी इस तरह का बीज हमने बोया तो हमें वो फल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ वर्ष, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, लेकिन जब वो फल मिलेगा तो इतना मिलेगा कि फिर हम ही नहीं खाते, हमारी पीढ़ियां भी उसे खाती हैं, जिसे हम अनगिनत कहते हैं। तो राजयोग में जब हम परमात्मा की याद में कर्म करते हैं तो वो कर्मों के फल इतना हमें फल देने वाले होते हैं कि हम इस जन्म में ही उसका फल अनुभव नहीं करते, लेकिन आने वाले अनेक जन्मों तक आत्मा उसका भाग्य या उसकी प्रालब्ध का अनुभव करती है। इसीलिए कर्म योग का महत्व है, ईश्वर की स्मृति में किए गए कर्म। फिर राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति माना परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव। ये प्रेम, श्रद्धा और समर्पण संबंध में होता है, तो ईश्वर से संबंध का अनुभव। राजयोग में हम संबंध का ही अनुभव करते हैं परमात्मा से। तो हम देखते हैं जितने भी परम भक्त हुए उन्होंने परमात्मा को कोई ना कोई विशेष संबंध से याद किया। हम गाते भी हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रमिणम त्वमेव त्वमेव सर्वमम देवदेव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो यानी परमात्मा हमसे सर्व संबंध निभा सकते हैं, तभी हम उनके लिए सर्व संबंधों का गायन करते हैं। He is all in one। मनुष्य तो नहीं होते, माता अलग होगी, पिता अलग होगा, भाई अलग, बहन अलग, दोस्त अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, सभी संबंध अलग अलग होते हैं। करके किसी का पिता टीचर होगा तो वही पिता भी है, हो सकता है कभी, वो भी रेयर है ना, लेकिन ज्यादातर सभी संबंध अलग अलग होते हैं। लेकिन एक परमात्मा में वो शक्ति है कि वो सभी संबंधों का अनुभव हमें करा सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रहलाद ने उनको पिता के रूप में याद किया, ध्रुव ने पिता के रूप में याद किया, मीराबाई ने उन्हें पति के रूप में याद किया, तुलसीदास ने भी उन्हें मित्र के रूप में याद किया, सती अनसुईया ने उन्हें बच्चे के रूप में याद किया। तो जिस भक्त ने जिस रूप में भगवान को याद किया, उन्होंने उनकी उस भावना को पूरा किया और समय पर जब उनको आवश्यकता थी तो उन्होंने उनकी रक्षा भी की। जैसे प्रहलाद का हम सुनते हैं कि उसके पिता उसे जान से मारना चाहते थे क्योंकि वो विष्णु की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु ने समय पर उनकी रक्षा की। ऐसे ही मीराबाई को जहर दे दिया गया, लेकिन वो जहर भी अमृत हो गया। तो ये हम देखते हैं कि भक्तों को उनकी भक्ति का और जो संबंध उन्होंने भगवान के साथ अनुभव किया उसका उन्हें फल परमात्मा ने दिया। ऐसे ही राजयोग में भी हम भगवान से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, या जो संबंध हमें प्रिय है उस संबंध का हम अनुभव करते हुए उसे याद करें। राजयोग संन्यास योग भी है, पर राजयोग हमें ये संन्यास नहीं सिखाता कि हम घर बार छोड़ करके, जैसे हम देखते हैं सन्यासी घर बार छोड़ करके कहीं जंगल में कहीं आश्रम में रहते हैं और अपना समय भगवान के ध्यान और भक्ति में बिताते हैं। लेकिन यहाँ पर सन्यास का अर्थ है घर गृहस्थ में रहते हुए अपने सांसारिक कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए, अपने संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बुराइयों से स्वयं को मुक्त करना, विकारों का सन्यास करना। और ये सन्यास उस सन्यास से भी महान है, क्योंकि अगर सन्यासी हो गए और बुराइयों को नहीं छोड़ पाए, जैसा हम देखते हैं कि कई साधु हैं नशे में लिप्त रहते हैं, भले ही उन्होंने सन्यास किया या कोई ना कोई उनकी जीवन में ऐसी बुराइयां हैं कि वो सन्यास को ही बदनाम करते हैं। तो ऐसे सन्यास से अगर हम संसारिक जीवन में रहते हुए अगर विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे जीवन में विष खोलने वाले बुराइयां हैं जो हमें दुखी करती हैं, और जब हम इनका त्याग करते हैं तो ये महानता है। और हम कहेंगे कि हम चाहते ही हैं कि हम इनको छोड़ें, पर हमें विधि नहीं मालूम कि कैसे हम इन विकारों को छोड़ सकते हैं। परमात्मा हमें वो विधि बताते हैं और इस तरह से हम बुराइयों को छोड़ पाते हैं। राजयोग समत्व योग भी है। समत्व योग, समत्व स्थिति माना समान और संतुलित स्थिति, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हम जैसे सागर में देखते हैं ऊपर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन भीतर में सागर बिल्कुल शांत होता है। तो जीवन में भी परिस्थितियों रूपी लहरें, कभी सुख कभी दुख, कभी सफलता कभी असफलता, कभी हानि कभी लाभ, कभी प्रशंसा होती है तो कभी ग्लानी भी होती है। तो ये विचलित करने वाली स्थितियां होती हैं मानव को। अगर बहुत दुख हो जीवन में, असफलता हो, हानि हो, तो व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश होता है, कई बार इतने ज्यादा कि अपना जीवन ही समाप्त करते हैं कई लोग। और अगर वो बहुत सुखी है, सफल है, तो वो अहंकार में भी आ सकता है। तो दोनों ही स्थितियां अज्ञान है। एक योगी हर स्थिति में, चाहे वो सुख सफलता हो, चाहे वो दुख और हानि हो, उसमें समान रहता है, क्योंकि पता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, जिसे गीता में स्थिर चित्त कहा गया। तो ये योग की बहुत बड़ी सिद्धि है। योग की सिद्धि ये नहीं, कई बार लोग समझते हैं कि चमत्कार हो जाएंगे हमारे जीवन में, क्योंकि हम देखते हैं हमारी संस्कृति में कुछ संत या साधु ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, वो कोई मंत्र जपेंगे, जिस वस्तु की इच्छा रखेंगे वो उनके सामने हाजिर हो जाएगी, या किसी को भभूत देंगे और कहेंगे कि ये भभूत आपका रोग दूर कर देगी या आपका जो भी कष्ट है वो उसका निवारण हो जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा होता भी है, क्योंकि ये लेने वाले की आस्था पर निर्भर करता है। जो गहरी आस्था है वो काम करती है, भभूत ने रोग ठीक किया या उसका कष्ट दूर किया वो बात नहीं होती है, लेकिन उससे उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और कहने लगे कि आपके आश्रम के पास जो नदी बहती है उसे मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कितना समय लगा आपको, तो कहा ये कोई 10-12 वर्ष का समय लगा होगा। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़े समय के बाद उनका दूध वाला आया जो नदी पार गांव से आता था, तो उन्होंने सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा तुमने कितने पैसे में नदी पार की। उसने कहा एक पैसे में, उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसा चलता था। तो उन्होंने सन्यासी को बोला कि देखो जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है वो काम करने में आपने इतने साल लगा दिए, आपने क्यों सन्यास किया है। तो कहा भगवत प्राप्ति के लिए। बोला यही आपने वो साधना की होती तो अब तक भगवान को पाया होता। तो कहने का भाव जो सच्चे संत थे उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, क्योंकि राजयोग अभ्यास से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और यही सिद्धि है। फिर राजयोग हठ योग भी है। आज हम देखते हैं कि भगवान को पाने के लिए कुछ लोग या उसके उससे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए परमात्मा से ईश्वर से हट करते हैं। हट करना माना एक जिद पर आ जाना। जैसे नवरात्रे में देखते हैं इतना कठिन व्रत रखेंगे, कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, 9 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे और कठिन यात्रा करते हैं देवी के मंदिरों तक, मीलों पैदल बिना चप्पल के चलकर जाएंगे, कुछ लोग साष्टांग करते हुए भी जाते हैं, हम ये देखते हैं भक्ति में। या भगवान का दर्शन करने के लिए एक टांग पर खड़े होकर के साधना करेंगे, या बैठे बैठे मतलब लेट कर नहीं सोएंगे, बैठे बैठे ही सब करना है जब तक कि वो, और फिर मरने तक आमरण अनशन जैसे कहते हैं ना, कि मृत्यु हो जाए लेकिन ये परमात्मा से मिलना ही चाहिए। इस तरह की तप साधना जप जो है हम देखते हैं भक्ति में, लेकिन राजयोग में हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए इस तरह के कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं होती। हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि परमात्मा तो हमें मिले हैं और हम अंतर मन से उनका दर्शन भी करते हैं, रोज ही हम उनसे मिलते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा करना और उसे फिर कायम रखना, ये हम राजयोग में करते हैं। मानो व्रत रखते हैं, तो हम व्रत क्या रखेंगे कि आज कुछ भी हो जाए सारा दिन मुझे क्रोध नहीं करना है। फिर कुछ भी हो जाए माना, कुछ भी हो जाए तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई गलती करेगा या कोई झूठ बोलेगा या कोई मेरे से अपमानजनक व्यवहार करेगा, कई कारण बन सकते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जैसे वो व्रत नहीं तोड़ते हम कहते हैं कि आज अगर मेरे सामने कोई स्वादिष्ट भोजन परोसता है तो हम कहेंगे आज नहीं, आज मेरा व्रत है, आज हम नहीं खा सकते। कितना ही हमें क्यों ना पसंद हो पर हम व्रत नहीं तोड़ते, क्योंकि हम सोचते हैं कि जिनके लिए हमने व्रत किया है वो भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। तो ये भी व्रत हम परमात्मा से करते हैं, तो फिर सारा दिन जो भी हो जाए मैंने गुस्सा नहीं किया, और अगर एक दिन हम इसमें सफल हो गए तो फिर हमें वो विश्वास होने लगता है कि हाँ कि हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हम सभी भगवान को याद तो करते ही हैं, भारत में तो कोई नास्तिक नहीं होते हैं। आप में से कोई है जो भगवान को नहीं मानते हैं? कोई नहीं, सब भगवान को मानते हैं। तो हम अपनी अपनी विधियों से, अपनी अपनी श्रद्धा से परमात्मा को याद करते जरूर हैं। तो हमारी विधियां क्या हैं, कौन सी विधियां अपनाते हैं हम? स्थूल विधियां अपनाते हैं। हमारे घर में एक पूजा का स्थान होता है, हमने चित्र रखे होते हैं जिनमें भी हमारी श्रद्धा है, उनके चित्र हम रखते हैं और रोज दिया बाती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं। और हमारा भाव क्या होता है, जीवन में सब कुछ ठीक चलते रहना चाहिए, यानी भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और हम थोड़ा डरते भी हैं भगवान से कि अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं हमारे देवता हमसे नाराज ना हो जाएं, तो कोई डर के कारण भी भक्ति करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्यार से होनी चाहिए, भगवान से तो डरने की बात नहीं है। फिर दूसरा, हम माला का आधार लेते हैं। कई बार हम वास्तव में मंदिरों में भी विशेष दिनों में दर्शन करने जाते हैं, घर में तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन मंदिरों में भी जब जयंती है, मानो रामनवमी है या जन्माष्टमी है या कोई ऐसा विशेष दिन है, तो हम मंदिरों में दर्शन, जैसे नवरात्रे में देवियों के दर्शन करने जाते हैं। तो भले ही बहुत भीड़ होती है उन दिनों में मंदिरों में, और धक्के वाले ही दर्शन होते हैं, है ना, आप एक धक्के में अंदर होते हैं और दूसरे धक्के में बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये भगवान का विशेष दिन है, उनका विशेष आशीर्वाद हमें मिलेगा, वो दुआएं हमें मिलेगी अगर हम आज के दिन हम जाएंगे तो हम जाते हैं। तो इस तरह से हम परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग माला जपते हैं, माला में जो भी उनके इष्ट हैं उनका नाम स्मरण करना, राम राम करना या हरे कृष्ण करना है, जो भी शिव शिव उनके नाम से वो माला जपते हैं। लेकिन होता ये है कि माला के मन के घुमाते हैं, शुरू में तो स्मरण होता है लेकिन बाद में हाथ में माला घूमती रहती है और मन भी घूमता रहता है। जिसके लिए कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। तो वास्तव में तो ये मन को ईश्वर में लगाने की बात है ना, मन को परिवर्तन करने की बात है, हाथों के मन के फिराने की तो बात नहीं है, वो तो हमने आधार लिया सिर्फ। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप गुरु मंत्र देते हैं भगवान को याद करने के लिए, और वो मंत्र क्या होते हैं, संस्कृत में होते हैं। संस्कृत हमारी भाषा है नहीं, इसीलिए वो मंत्रों के अर्थ हमें नहीं पता। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदया। हम इस मंत्र का जाप कर लेंगे लेकिन हमें पता ही नहीं कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, तो हमारे भाव नहीं जुड़ते उसके साथ, तो हमारी याद परमात्मा तक फिर नहीं पहुंच पाती। फिर हमें ये कहा जाता है कितनी बार जाप करना है, 8 बार, 108 बार या 1000 बार या 1,00,000 बार, जितनी भी बार। तो जब हम उसको गिनती करते हैं तो हमारा योग किसके साथ हो गया, गिनती के साथ हो गया कि ये 1000 बार हुआ कि नहीं हुआ, तो भी हम भगवान को याद नहीं कर रहे। और यहां भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मंत्र हैं और मंत्र से हमारे भाव नहीं जुड़ रहे, तो मुख से हम जपते हैं, शुरू में तो हमें शांति मिलती है क्योंकि मन दुनिया के विचारों से निकलकर मंत्र में आ गया। तो मंत्र का अर्थ ही होता है, मंत्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो मन को अशांति से मुक्त करे, मन प्लस त्र, त्र माना मुक्त करना, जो मन को मुक्त करे। दूसरा मंत्र का अर्थ होता है सलाह, जैसे मंत्री माना सलाहकार या मंत्रणा माना सलाह, तो ये मन को सलाह देना है। तो मेरे मन को मैं सलाह दूं, जो हम राजयोग में देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरे असली गुण कौन से हैं, मेरा असली स्वभाव, मेरे पिता कौन, कैसे मैं उनसे संबंध में आकर के उनसे प्राप्ति करूं, तो ये सब हम अपने मन को गाइड कर रहे हैं। तो राजयोग में हर विचार एक मंत्र की तरह है, और इसीलिए हम कहते हैं कि शांति हमसे सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर है। जो भी हमें अनुभव होता है वो चिंतन से होता है, जो हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर हमारे खुशी के विचार हैं तो हमें क्या अनुभव होगा? खुशी। और अगर हमारे दुख के विचार हैं तो क्या अनुभव होगा? दुख अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं एज यू थिंक सो यू फील एंड सो यू बिकम। हमारी फीलिंग्स हमारे विचारों पर आधारित होते हैं। तो राजयोग में जो हम सकारात्मक चिंतन करते हैं, जो स्पिरिचुअल चिंतन करते हैं, उसके आधार पर वो अनुभूति हमें सहज हो जाती है। तो इसीलिए राजयोग में हम ऐसे मंत्र का जाप नहीं करते या हमें वो आवश्यकता नहीं है मंत्र का जाप करने की, लेकिन हम अपने दिल के स्नेह के भाव से परमात्मा को याद करते हैं। राजयोग में जैसे हम मनुष्यों को याद करते हैं, उसके आधार क्या है? उसके आधार है स्नेह, संबंध और प्राप्ति। परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। तो संबंध के आधार पर याद सहज होती है। जैसे एक बच्चा अपने पिता को नेचुरल याद करता है, उसके लिए उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को सहज याद करते हैं, उसके लिए कोई कठिन क्रिया की बात नहीं होती है। तो ऐसे ही परमात्मा से हमारा संबंध, परिचय हमें हुआ। परिचय नहीं है तब तक मन भटकता है। हाँ, हमारी शिकायत होती है कि भगवान की याद में हमारा मन भटकता है। तो दुनिया में भी हम देखते हैं, मानो शादी की उम्र होती है तो एक कन्या को ये नहीं मालूम कि मेरा भावी जीवन साथी कौन होगा, तो उसकी बुद्धि भटकती है। या एक कुमार को भी नहीं मालूम तो उनकी बुद्धि भटकती है, कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ से होगा। लेकिन जिस घड़ी वो एंगेजमेंट हो जाती है, संबंध जुड़ जाता है, फिर याद कायम हो जाती है, फिर मन भटकने की बात नहीं। तो परमात्मा से हमारा परिचय हुआ। हो गया सभी का परिचय परमात्मा से? कौन है परमात्मा? कौन है? निराकार, ज्योति बिंदु, शिव, जिनको हम शिव कहते हैं, परमात्मा शिव, जो परम धाम निवासी हैं। और उनके संबंध के आधार पर हमारी याद तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की याद में हम याद करते हैं, याद आती हैं और याद सताती हैं। तो हम याद करते हैं उनको जिनसे हमें काम होता है, ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, या कोई अवसर है हमारे यहाँ तो हम जो भी हमारे परिचित हैं उनको हम निमंत्रण देते हैं, तो हम सोचते हैं कोई रह ना जाए, अगर कोई रह गया तो नाराज हो जाएगा, तो ऐसे हम याद करते हैं। दूसरा, हमें याद आती है। किसकी याद आती है? जिनके बहुत समीप होते हैं हम, या जिन्होंने हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है या कर रहे हैं, उनकी याद तो हमें भूलती नहीं, अपने आप याद आती रहती है। तीसरे प्रकार की याद होती है जो याद सताती है, दुख देती है। तो भगवान की याद, इन तीनों याद में से कौन सी याद होनी चाहिए? कौन सी याद होनी चाहिए? याद करें उनकी याद आए या याद सताए? कौन सी होनी चाहिए? कोई जवाब नहीं दे रहा। भगवान को याद करते ही नहीं है ऐसा तो पता ही नहीं कैसे याद करें, क्या करें। हाँ, उनकी याद सताए। तो परमात्मा की याद सताने वाली नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि सताने वाली याद दुख देने वाली याद, मानो कोई किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई। अब हमें पता है कि वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले गए, तो जब भी हम उनको याद करेंगे तो याद करके दुखी होंगे, क्योंकि अब वो हमसे कभी मिलने वाले नहीं है। तो क्या भगवान की याद ऐसी दुख देने वाली है? नहीं है ना। तो भगवान की याद सताने वाली याद नहीं हो सकती। किसी का बच्चा है विदेश में चला गया रहने के लिए, सालों तक मिलते नहीं, यहाँ माँ बाप जो है उसको याद करके दुखी होते हैं, तो ये है सताने वाली याद। लेकिन भगवान तो हमें सदा सुख देते हैं, वो तो सुखदाता है, तो जब भी हम उनको याद करते हैं तो उनकी याद हमें सुख देती है। दूसरी है आने वाली याद। तो निश्चित है आज के समय में भगवान की याद किसी को आती नहीं, क्योंकि भगवान से हमारा इतना समीप संबंध है ही नहीं, है ना। हम उनको स्वार्थ से याद करते हैं। स्वार्थ माना जब जीवन में दुख आता है, जब जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है जब हमें लगता है कि अब भगवान के अलावा कोई ये कर नहीं सकेगा, भगवान का ही सहारा है, या फिर मेरे जीवन की इच्छाएं हैं कुछ, तो हम किसके सामने खड़े होते हैं? भगवान के सामने खड़े होते हैं। आज एक स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, भगवान मुझे पास करा देना, चलो पास होने का विश्वास है तो इतने परसेंटेज मार्क्स आने चाहिए, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। हाँ चलो, आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं तो खेलने जा रहे हैं तो भगवान मैच जिता देना। फिर अगर हम नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ लिया मानो, तो फिर अच्छी नौकरी लगा देना, नौकरी लग गई अब अच्छे घर में शादी करा देना, अच्छा शादी हो गई अब एक अच्छा घर होना चाहिए। हाँ तो भगवान जी से हमारी अर्जी लगती रहती है। फिर और क्या, जो भी जीवन में चाहिए, कोई कमी है तो हम बोलते रहते हैं, कोई दुख हो गया, रोग हो गया, तो जीवन भर हम भगवान से मांगते हैं, ऐसा ही कहेंगे ना कि हम उनके आगे अपनी इच्छाएं बताते रहते हैं। निस्वार्थ भक्ति आज के समय में कोई भी नहीं करता है। तो तुलसीदास जी ने एक बात कही, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। अगर कोई भिखारी हमारे सामने आता है, कहा ना बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे मोती भी मिलते, मांगने से भीख भी नहीं मिलती, तो कोई भिखारी सामने आता है तो हम क्या भीख देना पसंद करते हैं? देना पसंद करते हैं क्या? हमें लगता है ये सक्षम है, कमा सकते हैं, तो क्यों भीख मांगते हैं? फिर हमें कोई दया का पात्र लगता भी है तो हम कितना देते हैं? मेरे पॉकेट में जो सबसे कम नोट है वो ही निकाल करके हम उसे देंगे, माना मांगने वाले हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो भगवान के सामने खड़े होकर हम मांगने जाते हैं तो भगवान को भी तो पता है उसने हमको क्या क्या दिया है, है ना, उसको भी पता है कि उसने हमें इतना क्या बोलते हैं विशेष या इतना अद्भुत शरीर दिया है कि जिससे हम असंभव को संभव बना सकते हैं। और फिर भी जाकर के हम छोटी छोटी चीजें भगवान से मांगते रहते हैं तो वो भी तो हमें जज करेगा ना कि अगर मेरे कर्मों के अनुसार मुझे वो मिलना चाहिए तो मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो परमात्मा के सामने हमें मांगने वाला नहीं, लेकिन अधिकारी बन करके उन्हें याद करना है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। राजयोग में हम परमात्मा को इसी संबंध से और अधिकार से याद करते हैं, और जो संतान होती है माता पिता से उसको मांगना नहीं पड़ता है। माता पिता खुद चिंता करते हैं कि इनको कहाँ एजुकेशन देनी है, कैसा भोजन होना चाहिए, कैसे वस्त्र होने चाहिए, कैसे रहने का स्थान प्रबंध होना चाहिए, सब कौन चिंता करता है, उनके भविष्य की चिंता कौन करता रहता है, माता पिता करते रहते हैं। तो भगवान तो स्वयं हमारा अनादि मातृपिता है, तो जैसे ही हम इस संबंध से परमात्मा को याद करते हैं वो स्वतः ही हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए राजयोग में हम ये नहीं कहते। फिर कुछ कहते हैं बहन जी भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, ये सब तो हम भगवान से नहीं कहते, लेकिन सुख शांति के लिए तो कहते हैं कि जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो ये तो ठीक है। क्या कहेंगे, ये तो मांग सकते हैं भगवान से, मांग सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, हमें ये भी मांगने की जरूरत है या नहीं है। फिर दूसरा है कि संबंधों में समीपता के आधार पर याद होती है, तो परमात्मा से हमारी समीपता कैसे हो कि याद आए। याद करने वाली तो देख ली हमने, हम करते हैं, लेकिन उनकी याद आए तो वो समानता के आधार पर समीपता होती है। जब हम विचारों में समान होते हैं या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, एक ही जैसा कार्य हम कर रहे हैं, वो समीप हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर डॉक्टर से मिलेंगे, बिजनेसमैन बिजनेसमैन से मिलेंगे, या बच्चे बच्चों से मिलेंगे, बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ समान है। गुणों में समानता, जैसे कोई विवाह करते हैं तो जन्म कुंडली मिलाते हैं, फिर देखते हैं कि इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर गुण मिलते हैं तो कहते हैं योग है, और नहीं मिलते तो योग नहीं है। तो भी समानता देखी जाती है कि इनकी कुंडली में कितनी समानता है, इनके गुण कितने मिलते हैं, तो इनकी शादी स्थायी रहेगी, नहीं तो। तो यहां भी परमात्मा से हमारी तीन समानताएं हैं जिसके आधार पर हमारी समीपता होती है। पहली समानता है स्वरूप की समानता। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, तो आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो राजयोग में हम अपने आप को देह से न्यारा करके आत्मचिंतन की स्थिति में स्थित होते हुए, आत्मा समझते हुए परमात्मा को याद करते हैं। अगर हम स्वयं को देह समझ करके परमात्मा को याद करेंगे, जो हम भक्ति में करते आए, तो हमारा योग नहीं लगता। ये ऐसे ही है कि दो वायर को अगर हमें जोड़ना है तो उनके ऊपर जो इंसुलेटर है, जो रबड़ है, वो हमें हटाना होगा। वायर से वायर को हम कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगी। अगर रबड़ से रबड़ जोड़ दिया तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये देह तो आवरण है आत्मा के ऊपर। तो हम स्वयं को सोल कॉन्शियस स्टेज में ले जाते हैं और फिर परमात्मा को, जो सदा ही निराकार है, उनको याद करते हैं, तो उनकी शक्तियों का फ्लो हमारे अंदर होता है। दूसरी समानता हमारी है परमात्मा के साथ धाम की समानता। आत्मा परम धाम की रहने वाली है और परमात्मा भी परम धाम निवासी है। वैसे भी माता पिता और बच्चों का घर एक ही होता है, हम ईश्वरीय संतान हैं तो हमारा घर एक ही है, तो उस आधार पर हम वैसे भी समीप हैं। और यूं भी हम देखें कि अगर कोई हमें अपने ही शहर का मिलता है, और ना सिर्फ शहर का, लेकिन जिस कॉलोनी में या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां का ही कोई मिल जाए जिसे हम जानते नहीं हैं, तो हम जितना उनसे अपनापन अनुभव करेंगे या समीपता अनुभव करेंगे उतना औरों से नहीं करते हैं। वो हमें अपने ही भाई लगे। यहाँ भी आप आए, मानो जो भी यहाँ पर डेडिकेटेड है उनमें से कोई आपके आपके शहर का या गांव का निकल आता है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बहुत जल्दी आप उनसे क्लोज हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब हमें ये समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है कि परमात्मा और हम आत्माएं एक ही परम धाम की रहने वाली हैं, तो उनको याद करना हमारे लिए सहज होता है। फिर हम किसी को भी याद करते हैं तो वहां ही याद करते हैं, वो जहां रहते हैं। मानो आप यहां आए और आपके माता पिता दिल्ली में रहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, और मेरा मन किसी कारण से उनको याद कर रहा है, तो मेरा मन कहां ट्रैवल करेगा? कहां ट्रैवल करेगा? दिल्ली। दिल्ली में वो जिस घर में, जहां जैसे, वही पूरा दृश्य मेरे सामने आएगा और हम ऐसे याद करेंगे उनको। तो शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और जब हम उन्हें याद करेंगे तो हमारा मन कहां ट्रैवल करना चाहिए? परम धाम में। किसी से हम मिलते हैं तो तो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो वो हमारे पास आ जाए, या हम उसके पास चले जाएं, या कोई तीसरे स्थान पर, कोई नए स्थान पर हम आपस में मिलें, जैसे लोग गार्डन में मिलते हैं या कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस जहां पर मिला जा सकता है वहां मिलते हैं। तो परमात्मा को भी हम यहां भी याद कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर हम याद करेंगे तो ये तो संसार की उलझनों में हम उलझे ही रहते हैं, हमारा मन उनकी याद में टिकेगा ही नहीं। लेकिन हम परम धाम में जाएं, यानी मन को संसार से न्यारा करके परम धाम में परमात्मा की याद में हम मन को स्थित करते हैं तो हमारी एकाग्रता सहज होती है, क्योंकि दुनिया की बातों से हम उस समय के लिए ऊपर उठ जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा को हम परम धाम में याद करते हैं। तो राजयोग में जब आपने अभ्यास किया तो आपने देखा कि हम मन को कहाँ ले जाते हैं, परम धाम में ले जाते हैं और वहां अपने मन को एकाग्र करते हैं। और तीसरी समानता है परमात्मा से हमारी गुणों की समानता। परमात्मा गुणों में सागर हैं और आत्मा उन्हीं गुणों में स्वरूप है। वो शांति के सागर हैं तो आत्मा शांत स्वरूप है, वो प्रेम के सागर हैं तो आत्मा प्रेम स्वरूप है, वो सर्वशक्तिवान है तो आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं और ये हम करते आए हैं। हम भक्ति भी करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के गुणों की महिमा करते हैं ना। आज आप आरती करते हैं या जो भी स्तुति करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो क्या होती है, परमात्मा के गुणों की महिमा होती है। या कीर्तन करते हैं, कीर्तन करना माना कीर्ति गाना, कीर्तन शब्द कीर्ति से आया है तो उनकी कीर्ति गा रहे हैं हम। लेकिन भक्ति में हम क्या करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, थोड़ा साज और बाजों के साथ, ढोलक के साथ, और ये सब करने से क्या होता है, हमारी सारी शक्तियां बाह्यमुखी हो जाती हैं। तो हमें उस समय के लिए थोड़ा अनुभव होता है, लेकिन बाद में जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता उससे, हम वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन राजयोग में हम मुख से नहीं बोलते लेकिन अंतर्मुखी होकर परमात्मा के गुणों का मनन चिंतन करते हैं। इसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन शब्द मेडिटारे से आया है, इसका भाव ही यही, इसका अर्थ ही यही है। तो जब हम मनन चिंतन करते हैं तो फिर वो गुण हमें जीवन में अनुभव होने लगते हैं, हमारे स्वरूप में आने लगते हैं और हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो राजयोग में हम परमात्मा के गुणों को याद करते हुए उनसे योग लगाते हैं। हमें अपने जीवन में याद परिवर्तन करने का अभ्यास होता है। एक छोटा बच्चा है, उसकी दुनिया उसकी माँ ही है, तो उसका माँ से ही योग होता है। माँ के अलावा कोई उसे लेने जाता है तो वो रोने लग जाता है क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो खेलने लगता है बच्चा, तो दोस्त बनते हैं उसके मोहल्ले के जो भी दूसरे बच्चे हैं। तो अब माँ बुलाती रहती है पर वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं आना चाहता क्योंकि अब दोस्त भी उसकी दुनिया में शामिल हो गए। और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है तो अब टीचर को भी याद करता है, अपने और साथियों को भी याद करता है क्योंकि टीचर उसको पढ़ाता है। तो कई बार टीचर का प्रभाव माँ से भी ज्यादा देखने में आता है। फिर जब वो और बड़ा होता है तो उसका योग हो जाता है अपने कैरियर से, सफलता से, धन कमाने के जो भी सोर्सेज होते हैं उनसे। और बड़ा हुआ, शादी हुई तो पत्नी के साथ योग हो जाता है, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ योग हो जाता है। योग माना याद, उसकी याद में कौन कौन शामिल होता जा रहा है। और जब बीमार होते हैं तो फिर डॉक्टर के अलावा ज्यादा कोई याद ही नहीं आता क्योंकि डॉक्टर ही उसको ठीक करेगा। तो सारी जिंदगी हमारी याद बदलती ही रहती है, कभी किसी को कभी किसी को। तो फिर हम ये सब बदल करके परमात्मा को भी तो याद कर सकते हैं, है ना। तो ईश्वर की याद भी इसलिए हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जैसे ही हमें इस याद का महत्व समझ में आता है, इससे होने वाली प्राप्तियां हमें अनुभव होने लगती हैं तो परमात्मा की याद में भी हमारा मन मुड़ जाता है, उसकी ओर भी लगता है। तो आप देख रहे हैं जब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं तो कुछ स्टेजेस हैं जिनसे हमारा मन गुजरता है। हम बैठे, शुरुआत की हमने योग करने की तो हमारा योग नहीं लगता, नहीं लगता माना आपने चिंतन दिया, क्योंकि योग माना हम आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करने के लिए बैठे हैं। तो सांसारिक विचारों को हम स्टॉप करते हैं, सामान्यतः दुनिया का प्रभाव है हमारे ऊपर, जो हम कर रहे हैं, जिनसे हम मिल रहे हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर है, यानी उन्हीं के ही विचार चलते हैं। लेकिन हम योग में बैठे तो हमने मन को थोड़ा दिशा बदली, आत्मा का चिंतन शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। लेकिन जैसे ही आपने एक दो थॉट किए, तुरंत आपका मन फिर से कहाँ गया, संसार के विचारों में, कि अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से उठकर बाहर जाकर के क्या क्या प्लानिंग है, वो सब शुरू होने लगती है। हम सोचते नहीं अभी तो योग में बैठे हैं, अभी योग कब सोचते हैं। फिर आप मन को थोड़ा सा घुमा कर लाएंगे और अभी दो थॉट भी नहीं किए, परम धाम तक भी मन नहीं पहुंचा, फिर बाहर, फिर हॉल से बाहर, होता है ऐसा? तो हम सोचते हैं अरे ये तो बड़ा कठिन है, मन तो लग ही नहीं रहा है, और 15 मिनट हम बैठे हैं और हमें कई कई बातें और नेगेटिव, क्योंकि कईयों को नेगेटिव सोचने की आदत होती है, तो फिर दूसरों की वो बातें, कैसे उसने किया, ऐसा किया, वैसा क्यों किया, और सोच सोच कर मन भारी हो रहा है। और मन भारी हो गया तो ना हम उठ जाते हैं, हम सोचते हैं कि योग में तो बैठे हैं, योग लग नहीं रहा और सिर भारी हो रहा है। अब सिर भारी योग से नहीं हुआ, सिर भारी किससे हुआ? हम चिंता नहीं कुछ और कर रहे हैं, हम योग थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो आत्माओं से योग लगा रहे हैं ना, परमात्मा से थोड़ी योग लगा रहे हैं। तो शुरू में ये संघर्ष अंतर्द्वंद की स्थिति, यानी हम चाहते कुछ और सोचना है और मन जा रहा है कहीं और, होती ही है। क्योंकि कोई भी कार्य आप जिंदगी में शुरू करेंगे तो वो शुरू में कठिन ही होता है। आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो क्या एक दिन में परफेक्ट हो जाते हैं? चाहे टू व्हीलर चलाएं या फोर व्हीलर चलाएं, कितना समय लगता है? शुरू में कैसे चलाएंगे? बहुत सावधानी से, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, तो बहुत उससे चलाते हैं। और फिर जब एक महीने में और या उससे भी ज्यादा समय में आप चलाने में कुशल हो जाते हैं, तो फिर हम बातें करते हुए या मोबाइल पर बात करते हुए भी गाड़ी चला लेते हैं, हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। तो ये भी जब हम स्थूल कोई भी कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं ना, भौतिक सफलता के लिए भी आज देखो जो व्यक्ति, जो खिलाड़ी खेलते हैं, ओलंपिक में मेडल लेते हैं, कितने घंटे रोज अभ्यास करना पड़ता है उनको, बिना अभ्यास के सफल हो जाते हैं क्या, या परफेक्ट हो जाते हैं क्या अपने खेल में? नहीं होते ना, भले ही खेल है लेकिन फिर भी अगर मेडल जीतना है तो क्या करना पड़ता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे। तो ये तो सूक्ष्म मन है, भौतिक सफलता के लिए भी इतनी मेहनत लगती है, तो फिर सूक्ष्म मन को अगर आप हम दिशा देना चाहते हैं तो क्या एक ही बार में हो जाएगा? तो इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना है, लेकिन हम अपने योग को जारी रखें। तो हो सकता है कि दो बार चार बार हम फेल होंगे, कुछ नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि सातवीं बार आठवीं बार आपको एक मिनट के लिए भी वो कनेक्शन मिला और वो शांति का अनुभव हुआ, तो वो जो अनुभूति होती है वो अतींद्रिय होती है, और फिर मन खिंचता है अपने आप कि हम फिर बैठे और उसका अनुभव करें। जैसे कहा कि याद आने वाली स्थिति जो होती है वो थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर हम उस सफलता को पाते हैं। कोई दीवार हमें तोड़नी है, उसको तोड़ने के लिए मैंने 100 हथौड़े लगाए, तो क्या पहले 99 हथौड़े बेकार गए? क्या बोलेंगे? हरेक हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और आखिर वो 100वें हथौड़े में टूटी। ऐसे ही हमारा हर अभ्यास हमें सफलता की ओर ले जा रहा है, कोई भी अभ्यास हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसीलिए योग में भी कभी भी हम ये नहीं सोचें कि मन तो लगता नहीं तो टाइम क्यों वेस्ट करना है, इसे तो बैठ करके और कोई काम करेंगे तो कम से कम ना, ये ऐसे ऐसे संकल्प कई बार चलने लगते हैं। लेकिन योग हमारे मन की स्थिति को अवश्य बदलता है। भले ही आपका बहुत एकाग्रता वाला योग न भी लगा हो तो भी आप जब योग से उठेंगे तो आपको लगेगा कि मन पहले से शांत हो गया है, मन में पहले से अधिक शक्ति आ गई है। फिर दूसरा स्टेप है मेडिटेशन। पहले स्टेप से हम क्रॉस हो जाते हैं, मन अपने स्पिरिचुअल थिंकिंग में आ गया है, फ्लो में आ गया है, तो अब हम मनन करते हैं परमात्मा के गुणों का। पहले तो हम मन को ले जाते हैं परम धाम में। परम धाम में परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप से हम देखते हैं, उस स्वरूप से देखते हुए उनके गुणों का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए उन्हें अनुभव करते हैं। वो शांति के सागर हैं तो कैसे उनकी शांति मुझ में समा रही है ना। ये इस तरह से है कि हम सागर के पास जाते हैं तो सागर से हमें मांगना नहीं पड़ता हवा दे दो, अपने आप हवा आती है हमको। हम अगर आग के पास बैठे हैं तो अपने आप हमें गर्मी मिलती है, हमें कोई मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिसका गुण है वो गुण ही उस गुण को अपने आप वो फैला ही रहा है। सूर्य निकला है तो प्रकाश होगा ही होगा, मांगने की जरूरत नहीं है कि सूर्य हमें प्रकाश दे दे। तो यही जो कहा कि सुख शांति भी हमें क्या भगवान से मांगने की जरूरत है, नहीं, मन को हम ईश्वर के समीप ले जाएं, अपने आप ही हमें वो सब मिलता है, क्योंकि वो है ही उसका सागर, वो सुख का ही दाता है, वो शांति का ही सागर है, वो प्यार का ही सागर है। तो जैसे ही मन ईश्वर के समीप है हम इन गुणों का अनुभव चिंतन से करने लगते हैं, तो ये एकाग्रता की ओर हमें ले जाता है, यानी उस एक गुण में हमारा मन स्थित होने लगता है। हम जैसे एक कहानी सुनते हैं महाभारत में, कौरव और पांडव जो हैं वो द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और विशेष धनुर्विद्या की शिक्षा। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची कि अब काफी समय हो गया है इनको सिखाते हुए, तो ये कहाँ तक इसमें पारंगत हुए। तो द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया रखी एक पेड़ के ऊपर और उसकी आंख पर निशाना लगाना था। तो सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि युधिष्ठिर, ये चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, तुम तीर चलाओ, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उसने कहा, गुरुदेव, पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है और उसकी आंख भी दिख रही है। तो उन्होंने हटा दिया उसको, कहा तुमसे निशाना नहीं लगेगा, तुम हट जाओ। फिर दुर्योधन को बुलाया, उससे पूछा, तो उसने भी यही कहा कि गुरुदेव, पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं और चिड़िया भी दिख रही है, उन्होंने उसको भी हटा दिया। फिर भीम का नंबर आया, उसने भी वही जवाब दिया, तो उन्होंने उसको भी हटा दिया। अब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने क्या बोला, गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम तीर चलाओ, और वो सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। तो उस लक्ष्य पर मन एकाग्र होना, अगर हमारा मन परमात्मा रूपी लक्ष्य, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा है, तो अगर उस पर हमारा मन पूरी तरह एकाग्र है, पूरी तरह से उन गुणों की लगन में मगन है, तो फिर हमें सफलता मिलती ही मिलती है और वो अनुभूतियां हमें राजयोग की उच्च अनुभूतियां जो है वो होने लगती हैं। तो उस एकाग्रता की अवस्था में माना देह और देह की दुनिया से पूरी तरह से हम न्यारे हो जाते हैं और लक्ष्य पर हमारा मन टिक जाता है। किसी भी क्षेत्र में हम हैं, अब खेल में भी एकाग्रता का महत्व है, आप जितनी एकाग्रता से खेलते हैं उतना ही उसमें सफलता मिलती है। तो ये एकाग्रता योग से हमारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम योग में इस एकाग्रता का अभ्यास करते हैं और ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जैसे ही भगवान से हमारा मन एकाग्र होता है, ईश्वरीय शक्तियां जुड़ते ही हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है। जो काम हम एक गुना कर सकते हैं वो 10 गुना अधिक शक्ति से हम कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। और चौथी स्टेज है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, हमें अनुभूति होती है, परमात्मा के शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति, ईश्वरीय प्यार की अनुभूति। संकल्प नहीं चलाना पड़ता, सिर्फ एक अनुभव, हम उनके साथ हैं और हमें अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। तो मन की स्थिति बदल जाती है। मानो आप योग करने बैठे और आपका मन बहुत दुखी है, टेंशन में है, परेशान है, अब हम योग करने बैठे और हम अनुभूति के स्टेज में चले गए, तो दुख की स्थिति सुख की स्थिति में बदल जाएगी। अगर हम अशांत हैं तो मन शांत हो जाएगा, उदास हैं तो खुश हो जाएगा। तो मन की स्थिति को बदलने की ताकत इस अनुभूति की स्टेज में है, लेकिन ये बहुत सहज नहीं आती। जैसे कहा कि जब हमारे अंदर वो कुशलता आ जाती है योग में, कि हम एक सेकंड में मन को परमधाम ले जा सकते हैं, हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, योग में हम पारंगत होने लगते हैं ऐसा हम जब कहेंगे, तो फिर अनुभूति की स्थिति में भी जाना हमारे लिए सहज होता है। तो ये विजुअल है इसका कि कैसे इनिशिएशन होता है योग का, फिर मेडिटेशन माना परमात्मा तक हमारे मन के विचार ट्रैवल कर रहे हैं, एकाग्रता की स्थिति और भगवान से हम जो संबंध का अनुभव करना चाहें, जैसे बताया हम अनुभव कर सकते हैं, उनको पिता के संबंध से याद कर सकते हैं, मात पिता है वो हमारा, फिर वो हमारा परम शिक्षक भी है, हमारा सद्गुरु भी है, वो हमारा साथी भी है, दोस्त भी है, कंपेनियन भी है, जो संबंध हमें पसंद आता है वो हम भगवान से अनुभव कर सकते हैं, तो उस संबंध का भी प्यार हम अनुभव कर सकते हैं। फिर ये एक्सपीरियंसिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू इनर बीइंग, ये रियलाइजेशन है। अब राजयोग में हमारी बैठक कैसी होनी चाहिए? हमारी बैठक जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम 15-20 मिनट तक आराम से सहज भाव से बैठ सकें, बहुत ज्यादा हमको हिलना डुलना ना पड़े, वो हमारे मन की स्थिरता में मदद करता है प्रारंभ में, जब तक हमें योग लगाने का पूरा अभ्यास नहीं है। तो हम जैसे अभी बैठे हैं सोफे कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे भी हम बैठ सकते हैं। अगर हम जमीन पर बैठते हैं तो उसको हम कहते हैं सुखासन में बैठना। पद्मासन तो सभी नहीं लगा सकते, पर अगर लगा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम सुखासन माना, जिसे हम आलती पालती मारकर बैठना कहते हैं, तो हम सुखासन में बैठें। इस बैठक का भाव ये है कि सभी के शरीर की स्थिति एक जैसी नहीं होती, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को घुटने में दर्द होता है, तो फिर वो लंबा समय तक किसी भी पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं। तो जो पोजीशन हमारे लिए कंफर्टेबल है वो पोजीशन में हम बैठें। फिर योग में हम, राजयोग में हम खुली आंख से योग करते हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं ध्यान करना माना आंख बंद कर लेना, और हम समझते हैं आंख बंद करने से ही भगवान याद आएगा, हमारी एकाग्रता अच्छी होगी। लेकिन राजयोग कर्म योग है, कर्म करते हुए हमें ईश्वर को याद करना है। अब जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करेगा तो आंख बंद करेगा क्या? हाँ, या हम किसी को याद करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं क्या? नहीं ना, नेचुरल याद होती है। तो ऐसे राजयोग में भी हम नेचुरल ही परमात्मा को याद करते हैं, और फिर हम अपने हाथों से काम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जिन कामों का अभ्यस्त होता है उसके लिए उसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, मन कुछ और सोचता रहता है, हाथ काम करते रहते हैं, तो हम कुछ और सोचते रहे उससे हम भगवान को याद करते हैं, तो वो कर्म योग है। तो आंख तो नहीं बंद करेंगे कर्म करते समय। दूसरा कारण है कि जब हम आंख बंद करते हैं तो हम सोते हैं। नॉर्मली आंख बंद करने का मतलब आंख कब बंद होती है? जब हम सोते हैं। तो आप आंख बंद करके योग करेंगे और आप थके हुए हैं मानो, तो क्या होगा? 5 मिनट तो आप बैठेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद निद्रा योग में चले जाएंगे। तो बहुत भाई बहनों को हम देखते हैं, जब हम योग अभ्यास करते हैं सामने से हम दृश्य देखते हैं ना, तो 25% जो है वो 5 मिनट के अंदर ही परमधाम, हम कहते हैं परमधाम में पहुंच जाते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि हम कंडीशन्ड है ना हमारा माइंड, आंख बंद करना माना सोना, इसीलिए खुली आंख से हम जागृत रहते हैं। और खुली आंख में हमें एकाग्रता का अभ्यास है, हो सकता है थोड़ा अर्ली डिस्ट्रक्शन हो कि ये आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ सामने रखा है उस पर मेरी नजर गई, है ना, वो टेम्परेरी होता है। और उसके बाद जैसे ही हमारा चिंतन ईश्वर की ओर गया और मन उसमें एकाग्र हुआ, फिर हम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, आप कुछ पढ़ रहे हैं और बहुत उसमें गहराई से उसमें है, मतलब आपके सामने से कौन गुजर गया, कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, मैंने नहीं देखा, आंख तो खुली है क्यों नहीं देखा, क्योंकि मन कहीं और है। जब मन देखता है तभी आंखें देखती हैं, अगर मन कहीं और लगा हुआ है तो आंखें खुले हुए भी नहीं देखते। आप कोई विचारों में खोए हुए हैं, खुली हैं आंखें, कोई सामने से गुजर गया आपने देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि मन नहीं देख रहा है, मन कहीं और है। तो जब मन परम धाम में है, भगवान के पास है, तो फिर हम देखते हुए भी नहीं देखते। ढोल भी बज रहे होंगे तो भी हमें सुनाई नहीं देंगे, हम आवाज से भी परे हो जाते हैं। तो इसलिए एकाग्रता के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, अगर कोई अनुभव हो रहा है हमें और आंख बंद हो जाती है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि हम आंख बंद नहीं कर सकते। और तीसरी बात होती है कि आंख बंद करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि आंख बंद करके ही हम सपने भी देखते हैं, सोते हैं तो सपने देखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सपने दिखाता है, यानी पूर्व की स्मृतियों को जागृत करता है। तो अगर हमने आंख बंद करके योग लगाना शुरू किया, तो हो सकता है शुरू में हम थोड़ा सा योग की तरफ आते हैं, लेकिन फिर ऐसी ऐसी स्मृतियों में मन चला जाएगा, ऐसी ऐसी बातें याद आने लगेंगी जो आप सोचेंगे ये बात अभी कहां से याद आ गई मुझको। और फिर उन मेमोरीज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगेगा, फिर योग लगता ही नहीं। तो इसीलिए हम ट्रिगर नहीं करते अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हम ट्रिगर करें, आंख बंद करें, खुली आंख से हम अभ्यास करने की ही कोशिश करते हैं। तो राजयोग इसलिए खुली आंखों से किया जाता है। फिर हम राजयोग में कुछ आधार लेते हैं बिगनिंग में, गीतों का आप सुनते हैं यहाँ पर, जब आप आकर बैठते हैं कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो प्रभु स्मृति का गीत बजता है। तो संगीत का प्रभाव हमारे मन पर होता है, अगर हम कोई भक्ति गीत सुनते हैं तो भक्ति भाव मन में पैदा होते हैं, अगर आप देशभक्ति का गीत सुनते हैं तो देशभक्ति के भाव पैदा होते हैं, और अगर आप कोई ऐसा फिल्मी गीत सुनते हैं तो मन फिर उसी तरफ जाने लगता है। तो जब हम प्रभु स्मृति का गीत सुनते हैं यहाँ पर, तो हमारे मन को दिशा बदलने में हमें सहायता मिलती है। तो इसीलिए म्यूजिक सुनकर, कोई भी ऐसा गीत सुनकर जो हमें सहायक बने, हम सुनते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें ये आधार चाहिए, बिना गीत के भी हम योग लगा सकते हैं। कुछ लाइट्स चेंज करते हैं, आपने देखा हल्की लाइट्स कर देते हैं, रेडिश लाइट होती है, तो वो परम धाम की हमें स्मृति दिलाती है। तो हम वैसा रंग तो यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन एक परम धाम में मैं आत्मा हूँ, मेरा मन उसको अनुभव करे, कंडीशनिंग देते हैं मन को कि हम योग करने के लिए बैठे हैं। और लाल रंग जो है वो स्टॉप का भी प्रतीक होता है, तो लाल लाइट करना माना मन को वर्ल्डली थॉट्स से स्टॉप करना और स्पिरिचुअल थॉट्स की तरफ ले जाना है। फिर लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक होता है, तो परमात्मा से योग में हमें शक्ति मिलती है, मन शक्तिशाली बनता है, तो ये उसका भी प्रतीक है। तो ये सब हम आधार लेते हैं। और राजयोग का जो समय है, बेस्ट समय होता है अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का समय, क्योंकि वो हमारा अपना समय है और उस समय हमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, मैच्योरिटी सोए हुए होते हैं उस समय और सायकाल का समय, तो जो समय हमारे लिए उपयुक्त हो। आज की जीवन शैली तो बहुत अलग है, आज लोग लेट नाइट्स सोते हैं और लेट मॉर्निंग्स जागते हैं, है ना। लेकिन योगियों की दिनचर्या इसके विपरीत होती है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इसको कहते हैं मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमारी दिनचर्या बदलने लगती है जब हम योग अभ्यास करते हैं, तो हमारा रूटीन जो है वो चेंज होता है और हम समय से सोते हैं, समय से जागते हैं और उस योग के लिए अपना समय निकाल पाते हैं, क्योंकि सारा दिन तो व्यस्त रहते हैं, सारा दिन तो भागदौड़ की जिंदगी होती है, हमें एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, कुछ लोग तो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो जब हमारा अपना समय है, वो समय हम योग अभ्यास करके उसका लाभ अपने जीवन में अनुभव करते हैं, पूरे दिन में उसका प्रभाव हमारे मन पर रहता है, तो एक्सपीरियंस करते हैं हम राजयोग अभ्यास के दौरान ये कॉन्शियसली डायरेक्टेड थिंकिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव पाथ है। जैसे हमने थॉट्स बताया आपको, हम कॉन्शियसली अपने मन को इन विचारों में ले जाते हैं तो मन शांति का अनुभव करता है, सेल्फ अवेयरनेस है, अपना निजी स्वभाव हम अनुभव करते हैं और उस निजी स्वभाव से हम शांति का अनुभव करते हैं, परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हुए हम उसके प्यार और शक्ति का अनुभव करते हैं। तो अभी हम कुछ मिनट्स के लिए जो हमने समझा, जो विधि हमने आपको आज समझाई, हम किस विधि से भगवान को याद करें, तो उसी विधि के अनुसार हम मन को चिंतन देते हुए परमात्मा को याद करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं, अपनी बैक को सीधा रखें और अपने मन को आसपास के व्यक्तियों से, आवाजों से न्यारा कर लें। स्वयं को देह से न्यारी, मैं एक चेतनीय शक्ति आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करें। मैं चमकते हुए सितारे के समान अजर अमर अविनाशी दिव्य सत्ता हूं, संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर को धारण किया है, मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूं, जीवन में शांति मुझे पसंद है, शांति में ही सुख समाया है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। शांति ही शक्ति है, मैं अपने अनादि स्वभाव में पवित्र हूं, श्रेष्ठ हूं, मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है। ले जाए मन को इस भौतिक जगत से पार, उस प्रकाश की दुनिया में, जो अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व है, वहां चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश है। मेरे पिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी हैं। मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, सुप्रीम लाइट हैं। मैं मन और बुद्धि के द्वारा स्वयं को शिव बाबा के समीप अनुभव कर रही हूं। उनके सानिध्य में शांति का अनुभव मुझे हो रहा है। शिव बाबा शांति के सागर हैं। उनकी याद से मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिवान हैं, ईश्वरीय शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। जब परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता शिक्षक और सद्गुरु हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं कि स्वयं भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाकर मुझे प्यार दिया है। और मेरी जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण की है। शिव बाबा ही सर्व के कल्याणकारी हैं, सबके सुख के दाता हैं। मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले हैं, मेरे परम हितकारी हैं। सत्य ज्ञान पाकर मैं अपने जीवन को धन्य अनुभव कर रही हूं। इसी में ही संसार की प्राप्तियां समाई हुई हैं। मैं सदा ही ईश्वरीय श्रीमत पर चलती रहूंगी और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस भौतिक जगत में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं, लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति शांति शांति।